सिविल सेवा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग एक विशेष अभियान के अंतर्गत उत्तर लेखन पर बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं, और इस पर हम लोग खूब जमकर विस्तार के साथ बातें करेंगे और बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें। कल मैंने जितने भी तथ्य आपके सामने रखे, जो भी आपका वक्त लिया, उसमें दो बातें प्रधान रूप से कही थी, मैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। पहला यह कि आपके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो आंसर राइटिंग है वो कोई मैकेनिकल टर्म नहीं है कि बिल्कुल आपको फार्मूला बता दिया जाए, या यूं कह लीजिए कि रेसिपी बता दी जाए और उससे फिर आप बिल्कुल नाप तौल कर अपनी डिश तैयार कर लें। प्लीज इसे आप अपने दिमाग में रचा बसा लीजिए। दूसरी बात मैंने जो इसी से ही जुड़ी हुई थी आपसे कही थी कि ये बेसिकली आर्ट भी है, ये केवल साइंस नहीं है, आर्ट भी है, और यही कारण है कि ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। देखिए, जो विशुद्ध साइंस होता है वो फिर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रह जाता है ना, वो तो मैकेनिकल हो जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मैकेनिकल है, उसकी एक सीमा है, लेकिन आपके दिमाग में जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो इंटेलिजेंसिया है वो तो बहुत व्यापक है, बहुत गहरी है, इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसमें संवेदनशीलता है, इसमें अपनी विचार शक्ति है। आंसर राइटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से है कि एक मैकेनिकल नहीं है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मामला नहीं है, इसमें आप हैं। ठीक है, इन दो बातों से अब आगे के जो तथ्य होंगे वो मैं अब आपसे इसमें चर्चा करने जा रहा हूं। अभी तक जो मैंने आपसे बातें की हैं, है ना, डेली ऑडियो लेक्चर में बहुत विस्तार से चर्चा की है मैंने, लेकिन याद रखिए कि उसमें आंसर राइटिंग के बारे में मैंने बहुत कम बातें की हैं, कभी कभी कुछ बात आई होगी। ज्यादातर तथ्य मैंने विचारों को लेकर के रखे हैं कि आप विचार कैसे करेंगे, किसी भी टॉपिक पर सोचेंगे कैसे, क्योंकि जो विचार है वो आंसर राइटिंग की आत्मा है, उसका ऑक्सीजन है। जो कुल जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए मैं स्पेशली चार अवयवों को, फैक्टर्स को, तत्वों को, तथ्यों को, पॉइंट्स को, जो भी आप कहना चाहें, महत्वपूर्ण मानता हूं। इन्हें आप आंसर राइटिंग के चार पिलर्स कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। उसमें जो पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है वह है विचार। विचार, जब मैं विचार कह रहा हूं तो इसे आप थोड़ा सा फैला दीजिए, इसमें फैक्ट्स भी हैं और थॉट्स भी हैं, इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। पहले हम उन चारों स्तंभों को एक स्थान पर देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं, विचार। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ है वह है भाषा। इंग्लिश में आप इसे एक्सप्रेशन कह लीजिए, मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन शायद ज्यादा सही शब्द होगा, अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन और भाषा में क्या फर्क है, लैंग्वेज में क्या फर्क है? भाषा का मतलब है कि आप किसी भाषा को जानते हैं, उसकी जो वोकैबुलरी, जो शब्दावलियां हैं, उनसे भी आप परिचित हैं, उसके वाक्य विन्यास से परिचित हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो थोड़ी सी उससे व्यापक हो जाती है। व्यापक इस मायने में हो जाती है कि ठीक है, आपके पास भाषा तो है लेकिन उस भाषा का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो एक्सप्रेशन हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे भाषा कह लीजिए, चाहे आप एक्सप्रेशन कह लीजिए, ये इसका सेकेंड पिलर है। जो थर्ड पिलर है, जिसके बारे में पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, या आप इसे पिलर मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मानता हूं, वह है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसमें से किस तथ्य को आपको टॉप पे रखना है और किसको बिल्कुल लास्ट में रखना है, उनके क्रम क्या होने चाहिए। मैं थॉट्स के क्रम की बात कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज के क्रम की बात नहीं कर रहा हूं, थॉट्स। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में उस आंसर के लिए चार पांच विचार हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो अब आप उन्हें किस क्रम से रखेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान के क्रम में रखेंगे, या मकान, कपड़ा और रोटी के क्रम में रखेंगे? इस पर हम लोग आगे चल करके बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो थर्ड है प्रायोरिटी, और जो फोर्थ है वह है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप अपने आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाते हैं। आप जाकर के पूछिए किसी राइटर से कि वो जब राइटिंग करते हैं या कोई कहानी लिख रहे होते हैं, कविता लिख रहे होते हैं, तो उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। शुरू में तो बहुत प्रैक्टिस कर करके वो कहीं उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि वो कुछ लिख सकें, और जब वो लिख भी लेते हैं तो उसकी कैसे काट छांट करते हैं ताकि वो मंज सके, उसमें चमक आ सके। प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन हॉल में तो आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकें ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन पहले से प्रैक्टिस करके आप अपने को इस लायक बना सकते हैं कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जो भी लिख करके आऊँगा वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, चमकीला होगा। और इसी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है स्पीड, उस पर हम लोग आगे चल करके बातें करेंगे। दोस्तों, जो मेरा अपना अनुभव रहा है मैं यहाँ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं स्टूडेंट भी रहा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एस्पिरेंट भी रहा, और इसके बाद कॉलेज में लेक्चरर भी रहा। तो लेक्चरर के रूप में मुझे कॉपियां जांचने का अवसर मिला, और यहां तक कि जब मैं सर्विस में आ गया तब भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की कॉपियां मेरे पास आती थी जांचने के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर मैंने मना कर दिया कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं अब कॉपियां जांच सकूं। ये बात मैं कह क्यों रहा हूं, ये बात मैं सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि यह विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि मैं जो भी आप सबसे कह रहा हूं वो अनुभव की भी बात है, विचारों की बात है और अनुभव की भी बात है। जब मैं अनुभव की बात कह रहा हूं तो दोनों तरह के अनुभव हैं, स्टूडेंट के रूप में आंसर लिखने का भी अनुभव है और एग्जामिनर के रूप में आंसर्स को जांचने का भी अनुभव है। मैंने देखा है, बहुत साफ तौर पर देखा है कि एक ही विषय पर स्टूडेंट्स ने निबंध लिखे हुए हैं, या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में अलग अलग स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है और सबकी मार्किंग अलग अलग हो रही है। हालांकि उसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है, याद रखिए उसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, आंसर सब सही है, लेकिन मार्किंग तो एक जैसी नहीं है। 10 नंबर अगर किसी प्रश्न के लिए रखे गए हैं तो जो मेरी मार्किंग रही है वो 3.5 नंबर से लेकर के कि चलो अब इसको फेल नहीं करना चाहिए, कुछ तो ठीक ठाक लिखा ही है, 3.5 नंबर से लेकर के और 7.5 नंबर तक है, प्रश्न वही है, गलत भी नहीं है। तो अब ये अंतर क्यों आ रहा है, आपको इसे समझना होगा। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है आंसर राइटिंग का। फैक्ट्स भी अगर आप ढूंढेंगे तो शायद एक जैसे मिल जाएं कि 3.5 नंबर वाले ने जो फैक्ट्स लिए हैं, मान लीजिए कि उसने 4 फैक्ट्स लिए हैं, तो वे चारों फैक्ट्स 7.5 नंबर वाले ने भी कवर किए हुए, तो फैक्ट्स भी वही है लगभग लगभग। तो वो कौन सी चीज है जो दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप पैदा कर देती है, 3.5 से 7.5 डबल का अंतर। तो सीधी सी बात है कि जो 3.5 वाला है वो बाहर हो जाएगा दौड़ में, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, और 7.5 वाला टॉप पे रहेगा। इसे समझने के लिए ही मैंने ये 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको, क्योंकि जब आप मैकेनिकल तरीके से आंसर राइटिंग की कोशिश करेंगे तो फिर आप इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे कि फिर ऐसा हुआ क्यों कि भैया मैंने सारे वो फैक्ट्स लिखे, मैंने उनके नियमों का पालन किया, जो निर्देश था कि 200 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, सब कुछ मैंने लिखा, इसके बाद भी मेरे मार्क्स आए क्यों नहीं। तो ये जो मैंने आपको 4 पिलर्स बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, आत्मसात कर लेने के बाद आप देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ आप समझ लेंगे कि हाँ ये अंतर क्यों आता है, राइट? तो दोस्तों, अब मैं इसके पहले पॉइंट पर आता हूं और वह है विचार, या यूं कह लीजिए कि फैक्ट्स एंड थॉट्स। फैक्ट्स रटने की चीज होती है, आप इसे रट सकते हैं, रटते ही हैं, उसे रटना ही पड़ता है, लेकिन थॉट्स रटने की चीज नहीं होती। थॉट्स 2 तरह के होते हैं, समझ लीजिए आंसर राइटिंग के संदर्भ में 2 तरह के होते हैं। एक थॉट्स वो है जो आपके पढ़े हुए हैं, मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी इस उम्र में, जो आप एग्जामिनेशन की उम्र होती है, बिल्कुल नहीं होती है कि हम कोई एकदम नए विचार लेकर के आ जाए, एक कोई बिल्कुल मौलिक बात कह दें, ऐसा सामान्यतया नहीं होता है। हो सकता है कि किसी टॉपिक पर आपके इस तरह के विचार बन जाएं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन सामान्यतया जो 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो पहले प्रकार के थॉट वे होते हैं जो हम पढ़ करके निकालते हैं। अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ा है तो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैं उनके बारे में मेरे अपने विचार हैं, मूर्तिकला के बारे में अपने विचार हैं, शासक के बारे में अपने विचार हैं, तंत्र के बारे में अपने विचार हैं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों के बारे में अपने विचार हैं, सबके बारे में अपने विचार हैं, आरक्षण के बारे में अपने विचार हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में अपने विचार हैं, सबके बारे में विचार है। तो किताबों से पढ़े हुए विचार नंबर वन, और दूसरा आपके अपने विचार। तो पढ़े हुए विचार तो ठीक है, उसे भी आप नोट कर सकते हैं, उन्हें भी आप फिर रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है अपने विचार। देखिए, जो पढ़े हुए विचार हैं उन्हें मैं फैक्ट्स के तहत ले लूंगा, फैक्ट्स के तहत। हालांकि पूरी तरह से फैक्ट्स के तहत लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ उसे फैक्ट्स के तहत लिया जा सकता है। लेकिन जो आपके अपने विचार होंगे वो क्या होंगे? आप कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा कि अपने विचार संभव नहीं है, लेकिन वो संभव हैं। वो किस तरीके से संभव हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज का समाधान क्या है? क्या इस चैलेंज का भी कोई समाधान है? जी हां, समाधान है, और बहुत आसान सा समाधान है। विचार करने पर तो मैंने इतने दिन तक आप सबसे बातें की ही हैं। क्या आप इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं? क्या आपको इसका समाधान नहीं मिल पाया है? समाधान आपको मिल गया है, मैं यहां उसे रिपीट करने नहीं जा रहा हूं। और यदि आपको समाधान अब तक इसका नहीं मिल पाया है तो दो चीजें हैं, या तो मैं अपनी बातें बहुत सही तरीके से आपके सामने नहीं रख पाया कि मैं आपको समझा सकूं कि आप विचार कैसे करेंगे, या फिर यह हो सकता है कि आप शायद उतना विश्वास नहीं कर पाए मेरी बातों पर, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे आत्मसात भी नहीं कर पाए। दो में से कोई ना कोई कारण होगा कि अपने विचार कैसे बनते हैं। यहां एक लाइन में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम किसी भी विषय को समझ लेते हैं तो समझने के बाद उस विषय के बारे में हमारे अपने विचार बनने शुरू हो जाते हैं, और जब हम उस विषय पर विचार करने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं, किसी से डिस्कस करने लगते हैं, तो उस विषय पर हमारे अपने विचार तैयार होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।